हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जल्दी ही करिश्मा, तारा और अमन राधिका अग्रवाल के घर पहुँचे। घर में कदम रखते ही तारा को एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसे राक्षस की गंध आ रही थी, जिसकी उसे अच्छी पहचान थी। उसकी सोच एक झटके में सच साबित हुई और उसे यकीन हो गया कि राधिका की मौत उसे राक्षस के अंश ने की थी, क्योंकि तारा परीलोक में हर रात उस राक्षस के साथ हुआ करती थी। परीलोक में वो उसकी गंध को अच्छी तरह पहचानती थी। कई बार उसे ये गंध अपने घर में भी महसूस हुई थी, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया था। उसे लगा था कि राक्षस अदृश्य होकर उसके पास आया होगा, लेकिन उसे सपनों में भी अंदाज़ा नहीं था कि विक्रांत रंधावा के अंदर राक्षस का अंश हो सकता है। तीनों के राधिका के घर के अंदर जाते ही राधिका के पिता, माता और भाई राधिका की फोटो के सामने बैठे हुए थे। कुछ पड़ोसी भी वहां मौजूद थे। राधिका का श्राद्ध था और सभी लोग आत्मा की शांति के लिए बैठे थे। राधिका के पिताजी की नज़र अमन सिंह राठौड़ पर पड़ते ही वे खुद को रोक नहीं पाए और अमन के पैरों में गिरकर रोने लगे। अमन भी खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तारा ने उन्हें संभाला, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। राधिका के पिताजी को अटैक आ गया था और वे अमन के पैरों में ही बेहोश हो गए थे। तारा को बहुत बुरा लगा। रोते हुए उसने अमन को बताया कि वे बीमार हैं। आनन-फानन में राधिका के पिताजी को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। उनका इलाज शुरू हो गया। तारा और करिश्मा राधिका के घर पर ही अमन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अमन एम्बुलेंस के साथ अस्पताल गया था। तारा परी ने जैसे ही राधिका के पिताजी को छुआ, उनकी सारी बीमारियां समाप्त हो गईं। बेहोश होने के उन कुछ ही पलों में तारा परी ने उनकी बहुत बड़ी मदद कर दी थी। राधिका के पिताजी, जो कई दिनों से बीमार थे, बिल्कुल ठीक हो गए थे। उनमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं बची थी। तारा परी जानती थी कि राधिका के बाद उनके परिवार को पालने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने उनके पिता को स्वस्थ कर दिया था ताकि वे कई सालों तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तब तारा ने राधिका की माँ से कहा, मैं राधिका का कमरा देखना चाहती हूँ। राधिका की माँ चौंक गई और रोते हुए तारा को राधिका के कमरे में ले गई। करिश्मा भी उनके साथ थी। राधिका के कमरे में कदम रखते ही तारा को ऐसा लगा जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो, लेकिन वहां केवल एक बिस्तर, एक ड्रेसिंग टेबल और कुछ साधारण कुर्सियां ही थीं। तारा हैरान थी। उसे लग रहा था कि कोई उसके सामने है, पर वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। करिश्मा के कमरे से बाहर जाने के बाद तारा बिस्तर के कोने पर बैठ गई और टांग पर टांग रख कर बोली, मैं जानती हूँ दुष्ट राक्षस, तू यहाँ मौजूद है, और मैं ये भी जानती हूँ कि तू इतनी आसानी से मेरे सामने नहीं आएगा, क्योंकि तू कायर है। क्या तुझे लगता है कि तू मेरे आसपास रहेगा तो मैं तुझे नहीं पहचान पाऊंगी? भले ही तू अदृश्य है, लेकिन मैं तुझे आसानी से महसूस कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ तू अभी भी मेरे आसपास है, लेकिन सुन ले, मैं अब परीलोक की पहले जैसी तारा नहीं हूँ। मैं पृथ्वीलोक की तारा परी हूँ, जिसके अंदर इंसानी जज्बात, इंसानी दिमाग, इंसानी शक्ति के साथ साथ तारा परी की शक्तियाँ भी हैं, और मैं अब तो जैसे दुष्ट राक्षस से नहीं डरती। मैं तेरा सामना करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुझमें हिम्मत है तो मेरे सामने आ, फिर मैं तुझे बताऊँगी मैं क्या कर सकती हूँ। और एक बात, अगर तूने मेरे आस पास किसी को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तेरा वो हाल करूँगी कि तू जहाँ से आया है वहीं चला जाएगा। तारा ने बड़े गुस्से से कहा। विक्रांत रंधावा तारा की हर बात सुन रहा था। उसे शक था कि तारा राधिका के घर गई होगी, इसलिए वो राधिका की खिड़की से अंदर आ गया था और अदृश्य होकर तारा की बातें सुन रहा था। जैसे जैसे तारा विक्रांत को धमकी दे रही थी, विक्रांत का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सोच रहा था, इस लड़की ने मुझे राधिका की मौत का दोषी माना है। उस चोर को जिसने उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी, उसे मैंने मौत दी, और ये मुझे ही गलत समझ रही है। आखिर क्यों इस लड़की को मुझसे मोहब्बत नहीं है? आखिर क्यों इसने पिछले जन्म में भी मुझसे प्यार नहीं किया, और ना ही इस जन्म में? मैंने इस जन्म में राक्षस के रूप में जन्म लिया है, लेकिन इससे ज्यादा शक्तिशाली मुझे होना ही था। अगर मैं इससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं होता तो क्या ये मुझे मिल पाती? कभी नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वो जल्दी से उसी खिड़की से काले धुएं के रूप में निकल गया। तारा परी ने काले धुएं को जाते हुए देख लिया और समझ गई कि राक्षस चला गया है। तारा ने खुद को आईने में देखा और कहा, अब मैं इस राक्षस से नहीं डरूंगी। इसने मेरी और अमन की आंखों में आंसू लाए हैं, मैं इसे खून के आंसू रुलाऊंगी। ये वादा खुद से करके वो कमरे से बाहर निकली। उसने देखा अमन राधिका के पिताजी के साथ आया हुआ था। वो अमन के पास जाकर खड़ी हो गई। राधिका की माँ राधिका के पिताजी को स्वस्थ देखकर हैरान थी और बोली, ये क्या, राधिका के पिताजी आप तो एकदम ठीक लग रहे हैं, अब आप झुककर भी नहीं चल रहे हैं, आपकी कमर और घुटनों का दर्द। राधिका के पिताजी बोले, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ। शायद राधिका के बॉस अमन साहब ने मेरा बड़े अस्पताल में इलाज कराया है। उन्होंने 2 घंटे के अंदर मेरा पूरा इलाज कर दिया और मुझे घर भेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हूँ। ये सुनकर राधिका की माँ बहुत खुश हुई और अपने पति के गले लग गई। उनका बेटा भी उनके गले लगा। फिर से वे राधिका को याद करके रोने लगे। तब तारा ने राधिका की माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम जानते हैं कि आपको कितना दुख हुआ है, हम राधिका की कमी नहीं भर सकते, लेकिन हम ये वादा करते हैं कि राधिका की सैलरी हर महीने आप दोनों के जॉइंट अकाउंट में आती रहेगी, वो कभी बंद नहीं होगी। तारा की बात सुनकर उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने उसे गले लगा लिया। तब अमन आगे बढ़ा और कहा, अंकल जी अगर आप चाहें तो राधिका की जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, राधिका की सैलरी तो आएगी ही, साथ ही आप उसकी जगह काम भी कर सकते हैं। ये सुनकर राधिका के पिताजी बहुत खुश हुए और बोले, बेटा हमें यकीन नहीं था कि हम अब कोई काम कर पाएंगे। हमारी बेटी के जाने के बाद हमें चिंता हो रही थी कि हमारा क्या होगा। हमारी बेटी हमारा एकमात्र सहारा थी, वो गई तो ऐसा लग रहा है कि हमारी जिंदगी भी चली गई है। आप लोग फरिश्ते की तरह हैं, आप लोगों ने हमारी बहुत मदद की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहकर राधिका के पिताजी अमन का हाथ पकड़कर रो पड़े। अमन ने उन्हें संभाला और बोला, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कंपनी आप लोगों का पूरा ध्यान रखेगी, आप जब चाहें तब ज्वाइन कर सकते हैं। राधिका के पिताजी बहुत खुश हुए और बोले, बेटा हमारी बेटी आपकी बहुत तारीफ करती थी, आज आपको देखकर हमें यकीन हो गया है कि हमारी बेटी झूठ नहीं बोलती थी। हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप हमारी बेटी के बॉस थे, बस हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं है। ये कहकर राधिका के पिताजी फिर रो पड़े। राधिका की माँ और उसका भाई भी रोने लगे। तारा, करिश्मा और अमन उन्हें चुप कराने लगे और उन्हें सांत्वना देते हुए कि उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग अपने अपने घर की ओर रवाना हो गए। विक्रांत रंधावा उन लोगों से पहले ही अमन के बंगले में पहुंच चुका था।